एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो विज्ञान को, खासकर फिजिक्स को, देखने का नजरिया शायद बदल दे।
नमस्कार। हाँ, ये किताब है जेएल हिलब्रॉन की भौतिकी का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स।
और इसकी खास बात क्या है पता है? ये सिर्फ वो न्यूटन आइंस्टीन की कहानियां नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम एकदम ऑब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ मानते हैं,
हाँ, विज्ञान को,
क्या वो सच में वैसा है? या उस पर भी समाज का, संस्कृति का, यहाँ तक कि राजनीति और पैसे का असर पड़ता है।
सही बात है। और आज देखिए, चारों तरफ इतनी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से।
हाँ बिल्कुल।
तो ये समझना और जरूरी हो जाता है कि ज्ञान, मतलब नॉलेज, असल में बनती कैसे है। ये किताब दिखाती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस कोई सीधी सड़क नहीं है। अरे, ये तो इंसानी कहानी है, उतार चढ़ाव वाली।
हाँ, और इसमें ये भी दिखता है कि भौतिकी का मकसद, उसका रोल, वो भी कैसे टाइम के साथ बदलता गया।
बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं भौतिकी की कहानी के कुछ अनदेखे पहलू।
हाँ जरूर। सबसे पहले लेखक के बारे में जान ले, जेएल हिलब्रॉन।
हाँ, जॉन लुइस हिलब्रॉन 1934 में जन्मे, 2023 में गुजरे, अमेरिका के थे और साइंस के इतिहास, खासकर फिजिक्स के इतिहास के बहुत बड़े नाम।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में प्रोफेसर एमेरिटस थे, ऑक्सफोर्ड येल में भी पढ़ाया उन्होंने।
और सबसे मजेदार बात पता है क्या है?
क्या?
उन्होंने पहले फिजिक्स में पीएचडी की।
अच्छा।
और उसके बाद वो साइंस के इतिहासकार बने। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है।
हाँ, ये तो वाकई अनोखी बात है। मतलब उनको साइंस की गहरी समझ भी थी और उससे इतिहास के बड़े कैनवस पर देखने की नजर भी।
बिल्कुल। जैसे कोई डॉक्टर जो बीमारी भी समझे और मरीज की पूरी जिंदगी भी।
सही। और वो सिर्फ महान वैज्ञानिकों की कहानियों में नहीं उलझे रहते थे।
नहीं, उनका जोर संस्थागत इतिहास पर था, मतलब वो ढांचे, वो स्ट्रक्चर्स,
जैसे यूनिवर्सिटीज, अकादमियां, लैब्स।
हाँ, सरकारी कमेटियां, ये सब चीजें जिन्होंने विज्ञान को करने का माहौल बनाया। वो ये पूछते थे कि ये माहौल बनता कैसे।
बिल्कुल सही। उनकी रिसर्च यही बताती है कि साइंटिस्ट को पैसा कहाँ से मिला, समाज में उसकी क्या इज्जत थी, उसके पास टूल्स क्या थे।
हाँ, औजार।
ये सब बातें उतनी ही जरूरी हैं जितनी उनके ब्रिलियंट आइडियाज। वो विज्ञान को एक इंसानी काम की तरह देखते थे, लैब से बाहर की दुनिया में।
तो अब आते हैं किताब पर, भौतिकी का इतिहास। ये हमें पुराने ग्रीस के दार्शनिकों से लेकर आज की क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी तक ले जाती है। लेकिन ये कोई स्कूल के टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें से फॉर्मूले हों
अन्य लगे।
हाँ, ये कैसे बहुत जरूरी है।
ये एक तरह की खोज है। हम सुराग जोड़ते हैं, देखते हैं ज्ञान कैसे बढ़ा। हिलब्रॉन हमें एक लंबी यात्रा पर ले जाते हैं।
कहाँ कहाँ?
प्राचीन ग्रीस, फिर मध्यकालीन इस्लामिक दुनिया, यूरोप, फिर वो वैज्ञानिक क्रांति का दौर।
हाँ, गैलीलियो न्यूटन वाला।
बिल्कुल। एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फिर वो 20वीं सदी के धमाके जिन्होंने फिजिक्स को हिला दिया।
और पूरी किताब में एक बात लगातार चलती है।
क्या?
कि कैसे धर्म, शिक्षा, पैसा देने वाले लोग, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि देश में शांति है या जंग।
अच्छा।
इन सब चीजों ने विज्ञान की दिशा तय की, कभी रफ्तार बढ़ाई, कभी ब्रेक लगा दिए।
हाँ, ये सिर्फ बड़े नामों की कहानी नहीं है, ये उन संस्थाओं की भी कहानी है, पढ़ाने के बदलते तरीकों की, कल्चरल शिफ्ट्स की।
सही।
जिन्होंने मिलकर विज्ञान के लिए जमीन तैयार की। किताब ये सवाल पूछती है, साइंटिस्ट ने वही सवाल क्यों पूछे, वही तरीके क्यों अपनाए, और अपने नतीजों का मतलब वैसे ही क्यों निकाला। हिलब्रॉन दिखाते हैं कि ये सब उनके टाइम के माहौल से, उनकी सोच से जुड़ा था।
और एक बहुत बड़ी बात, हिलब्रॉन ये नहीं कहते कि ये सब होना ही था, कि हम आज जहां हैं वहीं पहुंचना तय था।
नहीं
नहीं, वो मानते हैं कि ये आकस्मिक था, मतलब हालात जरा अलग होते तो शायद कहानी कुछ और होती।
अरे वाह, ये सोचना तो बड़ा दिलचस्प है।
तो अब थोड़ा और अंदर चलें, किताब के कुछ अहम हिस्सों को देखें।
हाँ जरूर। शुरुआत कहाँ से होती है?
प्राचीन काल और मध्य युग से। हिलब्रॉन इसे फिजिका कहते हैं। यहाँ अरस्तु का दबदबा था।
अरस्तु?
हाँ, दुनिया को समझने का तरीका गुणात्मक था, मात्रात्मक नहीं। हर चीज का एक उद्देश्य या टेलोस माना जाता था।
टेलोस?
हाँ।
ये क्या होता है?
अच्छा सवाल है। टेलोस मतलब अंदरूनी मकसद या मंजिल। अरस्तु मानते थे कि हर चीज का एक तय काम है।
अच्छा।
जैसे पत्थर नीचे ही गिरेगा, आग ऊपर ही उठेगी, ये उनका स्वभाव है। दुनिया चार तत्वों से बनी मानी जाती थी, धरती, पानी, हवा, आग और एक पांचवा ईथर।
हाँ, आकाश वाला तत्व।
बिल्कुल। गति इसलिए होती थी क्योंकि चीजें अपनी सही जगह पहुंचना चाहती थी। गणित का ज्यादा रोल नहीं था, ये सब फिलॉसफी थी।
दिलचस्प। और इसी दौर में जैसे आपने कहा इस्लामी विद्वानों का भी योगदान था, अलहेजन जैसे, और चर्च का भी रोल था।
हाँ, चर्च वाली बात पर हीलब्रॉन थोड़ा अलग नजरिया देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं चर्च मतलब विज्ञान का दुश्मन।
हाँ, गैलीलियो वाला किस्सा याद आता है।
बिल्कुल, वो टकराव हुआ, लेकिन हीलब्रॉन कहते हैं कि चर्च ने सदियों तक ज्ञान को संभाला भी। यूनिवर्सिटीज तो चर्च ने ही शुरू की।
अच्छा।
और चर्च ने ये आइडिया भी दिया कि दुनिया को एक समझदान ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इसे समझा जा सकता है तर्क से।
ये तो सोचने वाली बात है।
और वो टॉलेमी का मॉडल जिसमें पृथ्वी सेंटर में थी।
हाँ, जो बाद में गलत साबित हुआ।
हाँ, लेकिन हीलब्रॉन उसे सिर्फ गलती नहीं मानते, वो कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से वो एक कामयाब कंप्यूटेशनल सिस्टम था। सदियों तक ग्रहों की चाल का ठीक ठाक अंदाजा लगाता रहा।
मतलब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। अच्छा, इसके बाद आया मिश्रित गणित का दौर, वैज्ञानिक क्रांति, लगभग 1550 से 1700।
हाँ, यहाँ सबसे बड़ा चेंज किराया गणित का इस्तेमाल।
गणित?
हाँ, पहले गणित अलग था, दुनिया को समझना अलग। अब गणित को दुनिया की चीजों को नापने समझने का औजार बनाया गया। ग्रहों की चाल, गिरती हुई चीजें।
अच्छा, मिक्स कर दिया दोनों को।
बिल्कुल, इसी मिश्रण ने क्रांति ला दी। फिजिक्स अब सिर्फ क्यों नहीं पूछ रही थी, अब कैसे और कितना पूछ रही थी। ये सोच में ही बदलाव था, बहुत गहरा।
और इसी दौर में आए वो बड़े नाम, कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो।
हाँ, गैलीलियो का जिक्र आते ही चर्च वाला विवाद।
हाँ, वो तो है, लेकिन हीलब्रॉन दिखाते हैं कि मामला सिर्फ साइंस बनाम धर्म का नहीं था। उसमें गैलीलियो की पर्सनालिटी, उस वक्त की पॉलिटिक्स, धर्म की बारीकियां सब उलझा हुआ था। और गैलीलियो सिर्फ महान वैज्ञानिक नहीं थे, वो पैसा जुटाने में, सपोर्ट हासिल करने में भी माहिर थे।
हाँ,
राजाओं से, अमीरों से।
हाँ, ये पहलू अक्सर छूट जाता है। और फिर आए न्यूटन।
न्यूटन, जिन्होंने सब कुछ समेट दिया।
हाँ, अपने नियमों में, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। लेकिन हीलब्रॉन ये भी याद दिलाते हैं, न्यूटन अकेले नहीं थे।
हाँ, वो अपने से पहले के लोगों के काम पर खड़े थे।
बिल्कुल, और उन्हें रॉयल सोसाइटी जैसी नई संस्थाओं का साथ मिला। ये दिखाता है कि माहौल कितना जरूरी है।
सही बात है। अच्छा, न्यूटन के बाद क्या कहानी खत्म?
नहीं नहीं, बल्कि 18वीं सदी में, जिसे प्रायोगिक भौतिकी यानी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का दौर कहा गया, कहानी और फैली।
अच्छा।
न्यूटन ने फ्रेमवर्क दे दिया था, अब साइंटिस्ट उसमें डिटेल भर रहे थे। बिजली, गर्मी, रोशनी, नए नए राज खुल रहे थे।
और यहाँ आपने कहा था उपकरणों का रोल बढ़ गया।
हाँ, बहुत ज्यादा। बेहतर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एयर पंप और वो बिजली बनाने वाली मशीनें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। हीलब्रॉन कहते हैं कि ये सिर्फ टूल्स नहीं थे, ये खुद डिस्कवरी के इंजन बन गए। इनके बिना नई चीजें पता ही नहीं चलती।
जैसे बिजली का उदाहरण आपने
दिया। बिल्कुल, शुरू में वो अमीरों के लिए तमाशा थी, ड्राइंग रूम एंटरटेनमेंट।
हाँ, हाँ।
पर धीरे धीरे बेंजामिन फ्रैंकलिन, कूलम जैसे लोगों ने उसे नापने तौलने वाला विज्ञान बनाया। और अकादमियों ने पेरिस में, बर्लिन में,
हाँ, उन्होंने रिसर्च को सपोर्ट किया, इनाम रखे, जर्नल छापे।
बिल्कुल, विज्ञान अब धीरे धीरे एक प्रोफेशन बन रहा था।
फिर आई 19वीं सदी, क्लासिकल फिजिक्स का दौर। ऐसा लगने लगा कि बस अब सब समझ आ गया।
हाँ, ये इंटीग्रेशन का दौर था, एकीकरण का। दो बड़े काम हुए, एक तो थर्मोडायनामिक्स, ऊर्जा संरक्षण का नियम,
एनर्जी कंजर्वेशन।
हाँ,
और इसकी जड़ें कहाँ थी?
स्टीम इंजन को बेहतर बनाने की कोशिशों में, प्रैक्टिकल जरूरतों में।
अच्छा, और दूसरा बड़ा काम?
वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एकीकरण, बिजली, चुंबकत्व और रोशनी को एक करना।
हाँ, ये तो सुना है, मैक्सवेल के समीकरण।
बिल्कुल, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने गणित से इन सबको एक थ्योरी में बांध दिया
और बताया कि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
हाँ, ये इतनी बड़ी सफलता थी कि लोगों को लगा बस फिजिक्स पूरी हो गई। और इसी वजह से वो ईथर वाली थ्योरी और पक्की हो गई।
ईथर, वो काल्पनिक माध्यम?
हाँ, कि रोशनी को चलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो मान लिया कि ईथर है, हर जगह फैला हुआ।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, असली मोड़ तो अब आने वाला था शायद।
एकदम, 20वीं शताब्दी की शुरुआत, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का दौर। इसने पुरानी सारी समझ पर सवाल खड़े कर दिए।
दो बड़े धमाके हुए आपने कहा था।
हाँ, आइंस्टीन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स।
और हीलब्रॉन कहते हैं कि ये सिर्फ दिमाग की उपज नहीं थे।
नहीं, उस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऐसे नतीजे आ रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिन्हें पुराने नियम समझा ही नहीं पा रहे थे।
अच्छा, पहेलियां थी।
हाँ, इन्हीं पहेलियों ने नए आइडियाज को जन्म दिया।
रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये नाम ही थोड़े भारी लगते हैं।
हैं तो कोशिश करते हैं समझने की। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ने कहा, स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वो देखने वाले पर निर्भर करते हैं। और वो मशहूर फॉर्मूला E=mc2, ऊर्जा और पदार्थ एक ही हैं।
हाँ,
जनरल रिलेटिविटी ने कहा कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का मुड़ना है।
बाप रे, ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बातें हैं।
और क्वांटम मैकेनिक्स, वो तो और भी अजीब।
हाँ, वो तो कहते ही हैं।
वो बहुत छोटे लेवल पर काम करती है, परमाणुओं की दुनिया में, और उसके नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं।
जैसे?
जैसे चीजें एक ही समय में एक कण भी हो सकती हैं और लहर भी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी।
अच्छा,
हम किसी कण की पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ 100% सटीकता से नहीं जान सकते, अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। और नतीजे पक्के नहीं होते, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होते हैं। इसने न्यूटन वाले तयशुदा ब्रह्मांड की सोच को ही खत्म कर दिया।
तो ये सब नए विचार आ रहे थे, बहसें भी खूब हुई होंगी।
बहुत। हिलब्रॉन सॉल्वे कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं, जहां उस दौर के सारे बड़े फिजिसिस्ट बैठकर इन नए अजीब आइडियाज पर सिर खपाते थे, बहस करते थे।
हाँ, मतलब विज्ञान सहमति से ही नहीं, बहस से भी आगे बढ़ता है।
बिल्कुल। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध
और मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम।
हाँ, उसने सब कुछ बदल दिया। यहीं से शुरू हुआ वृहद विज्ञान यानी बिग साइंस का दौर, जो आज भी चल रहा है।
बिग साइंस मतलब बड़े पैमाने का विज्ञान।
हाँ, बहुत बड़ी बड़ी टीमें, सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक।
बजट भी बहुत ज्यादा।
हाँ, भारी भरकम बजट, उपकरण, फैक्ट्रियों जैसे बड़े, जैसे सर्न का एक्सेलरेटर। और सरकार, सेना के साथ साइंस का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। पार्टिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ये सब बिग साइंस के उदाहरण हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइंटिस्ट का रोल भी बदल गया, वो अकेले कमरे वाला जीनियस नहीं रहा।
काफी हद तक हिलब्रॉन यही दिखाते हैं। बिग साइंस में वैज्ञानिक अक्सर एक बड़ी मशीन का हिस्सा होता है।
उसे फंड भी मैनेज करना है, टीम भी चलानी है।
हाँ, और कभी कभी सरकार को सलाह भी देनी है। विज्ञान का सामाजिक राजनीतिक पहलू और साफ हो गया।
और यहाँ भौतिकी का मकसद और रोल भी बदला है ना, सिर्फ जानना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी।
बिल्कुल, ये नए लक्ष्य जुड़ गए। तो ये जो इतनी लंबी कहानी हमने देखी, इससे कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकलती हैं, सार क्या है?
हाँ, कोशिश करते हैं। पहली बात तो शायद यही कि फिजिक्स खुद क्या है, इसकी परिभाषा ही बदलती रही।
सही।
कभी ये फिलॉसफी थी, फिर गणित आया, फिर एक्सपेरिमेंट, और अब ये बड़े पैमाने का टीम वर्क है। इसका लक्ष्य भी बदला है, सिर्फ जानना नहीं, बनाना और कंट्रोल करना भी।
दूसरी बात जो हिलब्रॉन बार बार कहते हैं, फिजिक्स हमेशा एक सामाजिक और संस्थागत काम रहा है।
हाँ, यूनिवर्सिटी, अकादमी, लैब, फंडिंग, इनके बिना कुछ नहीं होता।
बिल्कुल। जैसे भारत में इसरो है, IITs हैं, ये संस्थाएं ही जमीन तैयार करती हैं।
तीसरा सबक पैसे का है, संरक्षण का, पैट्रनेज का।
हाँ, ये तो है।
चाहे चर्च हो, राजा हो या आज की सरकारें और कंपनियां, जो पैसा देता है अक्सर उसकी चलती है कि रिसर्च किस दिशा में जाएगी।
कड़वी सच्चाई है, पर है।
और चौथी बात,
थियरी, एक्सपेरिमेंट और इंस्ट्रूमेंट,
सिद्धांत, प्रयोग और उपकरण।
हाँ, इनके बीच का रिश्ता।
ये तीनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, नए उपकरण से नई खोज, नई खोज से नई थ्योरी, नई थ्योरी से बेहतर उपकरण की जरूरत, ये चक्कर चलता रहता है।
और पांचवी बात, वो छोटे विज्ञान से बड़े विज्ञान वाला बदलाव।
हाँ, उसने सिर्फ स्केल नहीं बदला, उसने कल्चर बदल दिया, काम करने का तरीका बदल दिया, एक साइंटिस्ट होने का मतलब बदल दिया।
हाँ, सहयोग, कोलैबोरेशन अब बहुत जरूरी हो गया है।
हिलब्रॉन की किताब में ऐसे कई विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ बातें तो एकदम अटक जाती हैं दिमाग में।
हाँ, जैसे वो कहते हैं कि भौतिकी कभी भी पूरी तरह तर्कसंगत उद्यम नहीं रहा है, बल्कि हमेशा अपने अभ्यासकर्ताओं के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में निहित रहा है।
मतलब साफ है, साइंटिस्ट भी समाज का हिस्सा है।
बिल्कुल, उनका काम समाज से अलग कैसे हो सकता है?
और वो वाली बात,
कौन सी?
वैज्ञानिक क्रांति केवल नए तथ्यों की खोज नहीं थी, बल्कि सवाल पूछने का एक नया तरीका इजाद करना था।
हाँ, दार्शनिकों के क्यों को गणितज्ञों के कैसे से बदलना,
ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ जवाब नहीं बदले, सवाल ही बदल गए।
मुझे भी ये बहुत गहरा लगा। और बिग साइंस के बारे में,
सस्ती, सरकारी सलाहकार और विशाल टीमों का सदस्य बना दिया।
परमाणु बम ने सिर्फ दुनिया नहीं बदली, वैज्ञानिक की पहचान भी बदल दी।
एक और पॉइंट था गणित को लेकर कि गणित भौतिकी की भाषा इसलिए नहीं बनी कि प्रकृति गणितीय है।
अच्छा, तो क्यों बनी?
बल्कि इसलिए कि सटीक भविष्यवाणियां करने और पैटर्न पहचानने के लिए गणितीय दृष्टिकोण शक्तिशाली साबित हुए।
मतलब प्रैक्टिकल वजहों से
काम आया, इसलिए अपनाया।
ये भी दिलचस्प है। और आखिर में वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का रिश्ता।
हाँ, कि ये दो तरफा है। भौतिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग मात्र परिणाम नहीं रहे हैं बल्कि अक्सर सैद्धांतिक विकास को प्रेरित करते हैं।
मतलब जरूरतें भी नया विज्ञान पैदा करती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? हम फिजिक्स का इतिहास जान के क्या करेंगे?
मुझे लगता है पहला फायदा तो ये है कि हम साइंस को असलियत में समझ पाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, इंसानी कोशिश है। इसमें गलतियां होती हैं, रास्ते बदलते हैं। इससे विज्ञान पर भरोसा ज्यादा मजबूत होता है, अंधा नहीं।
सही कहा। दूसरा?
दूसरा ये कि हमें कॉन्टेक्स्ट की अहमियत समझ आती है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके आसपास का माहौल देखना जरूरी है।
हाँ, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो या समाज, क्यों कुछ चला, क्यों नहीं चला।
बिल्कुल, ये सोच हमें चीजों को ज्यादा गहराई से देखने में मदद करती है।
तीसरा?
ये साइंस पॉलिसी और फंडिंग की बहसों के लिए भी जरूरी है।
कैसे?
कि पैसा कहाँ लगे, सिर्फ तुरंत फायदा देने वाली रिसर्च पर या बेसिक साइंस पर भी। इतिहास बताता है कि बड़ी खोजें अक्सर अप्रत्याशित जगहों से आती हैं।
ये बात तो है।
और चौथा?
चौथा ये हमें विनम्र बनाता है, बौद्धिक विनम्रता।
अरस्तु का विज्ञान, न्यूटन का विज्ञान अपने जमाने में अंतिम सत्य लगते थे, पर वो बदले।
तो ये याद दिलाता है कि आज हम जो जानते हैं हो सकता है कल वो भी अधूरा लगे। हमेशा सीखने की गुंजाइश है, सवाल पूछने की। मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि विज्ञान हवा में नहीं होता, वो जमीन से, समाज से, हम इंसानों की उम्मीदों, जरूरतों, सीमाओं से जुड़ा है।
बिल्कुल, और हिलब्रॉन की यही खूबी है, वो इन सारे धागों को सोच, समाज, संस्थाएं एक साथ बुनकर पूरे तस्वीर दिखाते हैं।
हाँ, आज हम फिजिक्स की जो इमारत देखते हैं उसकी नींव में इतिहास की कौन सी मिट्टी है, किन हाथों ने उसे बनाया है, ये जानना उसे और खूबसूरत बना देता है।
सही कहा।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
हाँ,
अगर विज्ञान इतना ज्यादा अपने माहौल पर निर्भर है तो भविष्य में ऐसे कौन से सामाजिक, तकनीकी या शायद सांस्कृतिक बदलाव हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं पा रहे और जो फिजिक्स की दिशा को एक बार फिर पूरी तरह बदल दें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।